ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्द असानी के साथ वार्ता कर रहे हैं। कतर के अमीर भारत की दो दिन की राजकीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे पर शेख तमीम बिन हम्द असानी की अगवानी की। अमीर शेख तमीम बिन हम्द असानी का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। कतर के अमीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बातचीत करेंगे और उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री असानी के बीच भारत तथा कतर के द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बीच केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कतर के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री शेख फैसल बिन थानी बिन फैसल असानी ने आज भारत कतर संयुक्त व्यापार मंच में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान भारत और कतर के बीच दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। संवाददाताओं से बातचीत में पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक संबंधों और सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा की गई।
भारत और कतर के बीच संबंध ऐतिहासिक है और संभावनाओं से भरे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो मित्रता का भाईचारे का संदेश अमीर ऑफ कतर को एयरपोर्ट पर जाकर रिसीव करके दिया है, मैं समझता हूँ उसी में पूरी कहानी स्पष्ट हो जाती है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में जम्मू कश्मीर में पुलिस, जेल, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के क्रियान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नए कानूनों के बारे में जम्मू कश्मीर के लोगों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। ओडिशा पुलिस ने भुवनेश्वर के एक निजी विश्वविद्यालय में एक नेपाली छात्रा की कथित आत्महत्या के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में विश्वविद्यालय के एक छात्र को गिरफ्तार किया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि उनकी सरकार स्थिति पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। इस बीच नेपाली दूतावास भारत सरकार तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यालय के संपर्क में है। सरकार ने सरकारी वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक रूपता लाने के लिए डिजिटल ब्रांड पहचान नियमावली जारी की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने नई दिल्ली में नियमावली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री प्रसाद ने विश्वास व्यक्त किया कि महत्वाकांक्षी पहल देश के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्पादों के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री यादव ने आज नई दिल्ली में अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 पर 18वें सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने के लिए संसाधनों की बर्बादी कम करने और संसाधन दक्षता को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल हानि और नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें एपिसोड में आज संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, संयुक्त पात्रता परीक्षा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र परीक्षा के मेधावी छात्रों ने अपनी सफलता की कहानियां साझा की। बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्रों ने कहा कि विद्यार्थी अपने मस्तिष्क में सभी प्रकार की जानकारियों को नहीं संग्रहित कर सकते हैं, ऐसे में उन्हें ऐसे विषयों पर ध्यान देना चाहिए जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। एफआईएच प्रो हॉकी लीग में आज शाम ओडिशा के भुवनेश्वर में हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला जर्मनी से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।